खुशियाँ नगमे बिखेर रही हैं, खुशियाँ नगमे बिखेर रही हैं, दबे दबे पाँव से कुछ कह रही हैं, दबे दबे पाँव से कुछ कह रही हैं, आज दिन बहुत खास है, आज दिन बहुत खास है, पधारे आज बहुत ही खास मेहमान हैं, पधारे आज बहुत ही खास मेहमान हैं, थोड़ा सा वक्त देकर इनका स्वागत करें, थोड़ा सा वक्त देकर इनका स्वागत करें, क्योंकि ये हमारी शान है, क्योंकि ये हमारी शान है। स्वागत है आपका आपके प्रोग्राम गौधली में, जिसमें हम आपकी मुलाकात कराते हैं किसी खास मेहमान से। तो आइए आज देखते हैं कौन है हमारे बीच खास और क्या कुछ जानकारियां हमें मिलने वाली हैं। तो कहीं मत जाइए, सुनते रहिए ज्ञानस्थली 89.6 FM, ये है गोंडा शहर की धड़कन।
ज्ञानस्थली 89.6 FM, गोंडा शहर की धड़कन,
गोंडा शहर की धड़कन।
आपका होस्ट एंड दोस्त आरजे अदनान मौजूद है आपके साथ, आपके अपने वाले स्टूडियो में। शो चल रहा है गोधली और आप सुन रहे हैं रेडियो ज्ञानस्थली 89.6 FM, ये है गोंडा शहर की धड़कन। अब तक ना जाने कितनी ऐसी पर्सनालिटीज से हमने आपको रूबरू कराया है जो गोंडा की प्रोमिनेंट पर्सनैलिटीज रहे हैं, साथ ही साथ उनकी जिंदगी से जुड़े कई ऐसे पहलुओं पर भी हमने चर्चा की है, उनसे बातचीत की है, जिससे ना जाने कितना कुछ हमको आपको सीखने को मिला है। साथ ही साथ उनके कार्यक्षेत्र के बारे में हम बातचीत करते ही हैं, जिससे हमको आइडिया होता है अगर हम भी उस कार्यक्षेत्र को अपना बनाते हैं तो कैसे उस कार्यक्षेत्र में हम जाएं, कैसे सरवाइव करना है, कैसे जाना बेहतर रहेगा, किन लोगों को अप्रोच करें, ये सारी ही चीजों पर हम चर्चा करते हैं। आज उसी कड़ी में हमारे बीच में एक खास मेहमान मौजूद है, लेकिन उससे पहले बता दें कि हमारे इस शो में यानी गोधुली में आज हमारी को होस्ट की भूमिका निभा रही हैं आपकी अपनी फेवरेट आरजे मोनिका। मोनिका, सबसे पहले तो हम वेलकम करते हैं आपका अपने इस शो में।
थैंक यू सो मच आरजे अदनान।
अब हम चलते हैं अपने मेन गेस्ट की तरफ और उनका शुक्रिया अदा करते हैं। तो आज हम बता दें आप सभी लोगों से कि हमारे बीच में श्री सूबेदार सिंह साहब मौजूद हैं, जो कि पूर्व प्रधानाध्यापक हैं पूर्व माध्यमिक विद्यालय शिव रतन सिंह। सबसे पहले तो हम आपका बहुत बहुत वेलकम करते हैं, बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं कि आपने अपना कीमती वक्त निकाला सर।
जी सर
जी। अब जैसा कि हमने अपने श्रोताओं से बताया है कि पहले तो हम आप ही से जुड़े हुई कुछ मुद्दों पे बात करेंगे, कुछ किस्से कहानियों पे बात करेंगे, यानी टोटल आपके बारे में जानने की कोशिश करेंगे
जी।
तो अपना एक संक्षिप्त विवरण हमारे श्रोताओं को दे दे, जिसमें बता दें कि आपका पूरा नाम क्या है, आप कहाँ के रहने वाले हैं, अपने माता पिता भाई बहन और अपनी प्रारंभिक शिक्षा के बारे में।
मेरा कसिया श्री रतन सिंह मनकापुर के पास पढ़ता है और हमारे पिताजी का नाम बाबू प्रसाद सिंह था, माता जी का नाम श्रीमती सिंह था। उसके अलावा हम लोग पहले प्राइमरी जूनियर में पढ़े हैं, उस समय ये पहाड़ा वहाड़ा हुंठा हुंठी पौआ सोया रहैया ये सब मुझवानी जटाया जाता था। इसके बाद में ये जूनियर हाई स्कूल पढ़ने में आते हम लोगों को गणित बहुत तेज था, हम 100 में 99% गणित में पाते थे।
क्या बात है।
हाई स्कूल में भी 100 में 98 नंबर पाए थे। उसके अलावा हमारे पिताजी भी पहले के मुंडी स्कूल पास थे, वो 4-5 बेटर हैं, हम लोगों को मुझे गणित पढ़ाया करते थे। और पहले खेल कूद का उसमें तो ज़्यादा था नहीं, वही कबड्डी हम लोग खेलते थे और कुश्ती उश्ती लड़ाते थे बच्चों को, और ऊंची कूद और लंबी कूद भी हुआ करती थी। लेकिन जुलाई 65 में जब हम इंटरमीडिएट पास किए यहीं गोंडा से टॉमसन इंटर कॉलेज से मैथमेटिक्स साइंस से, तभी हम अध्यापक हो गए BPS इंटर कॉलेज रहरा बाजार बलराम। उस समय BSc वाले नहीं मिलते थे कि हाई स्कूल गणित पढ़ावें, तो इंटर पास ही रहते थे वही लोग पढ़ाने थे। इसके बाद में हमने BA MA किया और साहित्य नाटक तो विशारद भी किए, और 3 साल वहाँ सेवा करने के बाद उसको रिजाइन करके हम बेसिक शिक्षा परिषद में आ गए एज ए साइंस टीचर। साइंस हम अच्छा विज्ञान में से पढ़ने गए कि कोई चीज़ हम देखेंगे तो उसमें क्या गुण है क्या अवगुण है दोनों एक साथ आ जाते हैं, खोज करने की प्रवृत्ति बहुत ज़्यादा हो जाती है किसी चीज़ में। हमारा बचपन से लगाव पौधों को लगाने में था, इसीलिए हमारे पास ज़मीन कुछ ज़्यादा थी, करीब 40 एकड़ ज़मीन थी, सब हमने बाग लगा दिया है, आम कटहल अमरूद और लीची का भी तो कुछ महुआ का भी बाग और किनारे किनारे सागौन के पेड़ भी लगा दिए हैं कि हवा का झोंका रोकने के लिए वो बॉर्डर अपनी जगह पर रहा है। इससे कई फायदा है कि पर्यावरण में शुद्ध हवा सभी जीवधारियों को मिलेगी। अगर हम ये काम खा के फेंक देते हैं तो तमाम चींटी और हाड़ा वो भी अपना स्वाद उसी से लेने लगते हैं। महुआ जब गिरता है तो छोटी छोटी चींटियाँ उसको चूसने लगती हैं। बाग में शहद के छत्ते भी लग जाते हैं अपने आप लगाए रहते हैं। बड़े बड़े छत्ते लगाते हैं तो उसमें जो मध निकाला जाता है तो एक एक छत्ता पर पाँच पाँच सात सात किलो मध शुद्ध निकल आता है मध।
बिल्कुल सही आपने कहा, यानी एनवायरनमेंट को बहुत ज़्यादा फायदा पहुँचता है।
जी हाँ।
अभी एक बार फिर से हम वापस चलते हैं आपके बचपन की तरफ। क्योंकि देखिए सभी का अपना एक बचपन होता है।
जी हाँ।
और बचपन खूबसूरत होता है, इसमें कोई शक की बात नहीं। और कहते हैं कि बचपन में अगर शरारत ना हो तो फिर बचपना कैसा।
हाँ,
तो थोड़ा सा बचपन की तरफ हम चलते हैं और जानना चाहेंगे कि आपका बचपन कैसा बीता। कुछ बच्चों पे बहुत ज्यादा भार होता है तो कहीं ना कहीं वो घर के काम में इन्वॉल्व होते हैं, लेकिन अगर आपके वक्त की बात की जाए, जमाने की बात की जाए, तो उस टाइम बच्चे घर का भी काम में हाथ बटाते थे, पढ़ते भी थे और खेलते भी खूब मन लगा के थे।
जी हाँ।
आपका बचपना कैसा बीता पहले तो हमको ये बताइए।
जब हम लोग यर्थ तक पढ़े हैं, प्राइमरी से यर्थ तक, तब तो ज़्यादा खेल कूद होता था। और जब हॉस्टल में चले आए तो सुबह शाम कहीं थोड़ा बहुत होता था, यहाँ इंटर में या हाई स्कूल में। हाई स्कूल हमने केजी इंटर कॉलेज उतरौला से पास किया था। पंडित अकबरली प्रिंसिपल थे, वो इंग्लिश से वो संस्कृत से एम ए थे, इसलिए उनको पंडित अकबरली कहा जाता था। उस समय भी हमको फर्स्ट डिवीज़न में 9 नंबर कम हुआ था, 6 सब्जेक्ट ऐसा था। आठ से हमसे बहुत इंटरेस्ट था। 8 साइड में अगर ज्योमेट्री चार्ज होता है तो उसे गणित और तेज हो जाती है। इसके बाद जब यहाँ गोंडा में आए तो यहाँ टॉमसन स्कूल में एडमिशन लिए बेटा। हॉस्टल में रहते थे, खाना बना बनाए मिलता था, मेस चलता था और बहुत सस्ता ज़माना था। 10 नए पैसे चाय मिलती थी, 10 नए पैसे समोसा मिलता था उस समय। और खाने का डाइट हम लोगों का पर डाइट 4 आना 4.25 आना से ज़्यादा पड़ते नहीं था। 30 रुपया जमा कर देते थे, साल भर उम्र महीना भर खाते थे और गेस्ट आ गए तो भी जुड़ जाता था। तो जो मेस मैनेजर होते थे वो जोड़ते थे तो कहीं 4 आना कहीं 4.25 आना के साथ, इससे ज़्यादा नहीं पड़ता था। बस फिर जमा हर महीने जमा होता था। और टॉमसन स्कूल की फील्ड बड़ी अच्छी थी, सुबह दौड़ भी होता था वहाँ। उसमें कोई दुकानें सन 65 में कोई दुकान वकान नहीं थी, एक ठो खाली चाय की दुकान में कुछ नहीं, सब सुने रहता था। यहाँ जब आए पढ़ने लिए तो जब शाम का गोंडा चौक में चला जाइए तो हॉस्टल जाए लिए हम तब जान ही नहीं पाई कि कौन पुरुष है कौन पक्षों को तकिन। तब रिक्शा पर बैठी कह दी टॉमसन में स्कूल उतार दियो, तो वो ले जाकर उतार जावत रहा। वो भी डरते डरते जाता था कि लड़के हैं पैसा दिए दुनिया में तब चला नहीं जाए।
जी जी जी
सही बात।
अच्छा, तब उसके बाद जब दिन में आते थे तो निशान लगा लेते थे कि ये इसमें जहाँ ये लिखा है ये इस साइड है, ये पूरा भी क्वेश्चन, तब धीरे धीरे जान पाने लगे। और
यानी बचपन आपने काफ़ी अच्छा बीता, बहुत जैसे हाँ, बच्चों हाँ। का बीता है। और काफी अच्छा, सारी
दूसरी बात ये थी कि साइंस साइड में जितना डीएम एसपी अधिकारी के बच्चे थे उसी में ज़्यादा पढ़ते थे, तो इन लोगों से संपर्क रहा, इन लोगों के घर भी घूमने हम लोग चले जाते थे।
क्या बात है, तो बहुत अच्छी बात है।
और इससे थोड़ा डिसिप्लिन ये मालूम होता था कैसे बैठा जाता है, कैसे बोला जाता है, कैसे क्या होता है, इसकी भी जानकारी हुआ करती थी।
कहते हैं क्योंकि संगत का बहुत असर होता
बहुत
है,
बहुत असर होता है।
कंपनी डज इफेक्ट भी बोलते हैं इंग्लिश में। बिल्कुल। तो अपने भाई बहनों के बारे में आपने नहीं बताया कि कितने भाई बहन थे और हमारे क्या क्या किया।
हमारे एक छोटे भाई और थे, वो बाबा जय गुरुदेव के शिष्य में फिक्र में ज़्यादा रहते थे। बोरा का कुर्ता और बोरा का पैजामा, बोरा टोपी लगा के काफ़ी चलते थे। और ग्रेजुएशन उन्होंने लखनऊ यूनिवर्सिटी किया था, नरेंद्र देव इंटर कॉलेज से। तो और एक सिस्टर थी, उनकी शादी हुई तो उससे एक साल बाद उसकी डेथ हो गई। हम तो वही भाई थे। हमारे छोटे भाई का नाम पेशकार सिंह है, मेरा नाम सूबेदार सिंह है।
पेशकार सिंह, सूबेदार सिंह,
जी
ये दोनों ही पोस्ट है। तो पिताजी ने कुछ स्पेशली मन्नत से मांगा था या क्या था, मतलब इसके पीछे कोई वजह है क्या आपका नामकरण के पीछे?
अब सूबेदार सिंह रख दिया तो हम लोग उसी नाम से जाने जाते थे।
तो आपने कभी पिताजी से जाने की कोशिश नहीं की?
नहीं, कोशिश तो नहीं किया, यही तो थोड़ा भूल हुआ। पूछना चाहिए था, कहे थे और कोई नाम नहीं मिला था।
ओके।
मैं आपसे जानना चाहती हूँ, जैसे बचपन में हमने बहुत सारे शैतानियाँ की हैं, शरारतें की हैं, तो कोई ऐसा बचपन का किस्सा जो आप हमसे शेयर करना चाहें और जो बहुत ही दिलचस्प लगा हो आपको अभी तक?
बेटा, हम लोग पढ़ने जाते थे तो तख्ती रहती थी एक
जी जी
लकड़ी की, तो कोई इमली पेड़ देखे तो तखिया से इमली लागत रहे। उसके बाद चार या पाँच से कागज कलम पढ़ाई होती थी
जी।
स्कूल जाते थे उसमें उस तखिया का करीखा लगा के रगड़ा जाता, झुरवा जाता, लेकिन तब लिखाई पढ़ाई होती थी। तो उस समय बहुत टीचर्स बहुत मारते थे हम लोगों को, जब सुनने लगे हैं कि सवैया सुनाओ, अढ़ैया या पौना, और जो कौन भूल गया उसे बड़ी मार पड़ती थी। लेकिन भाई क्या किया जाए,
यानी पहले अनुशासन का मतलब मार ही होता
था। हाँ, मार ही होता था, उसमें कोई कुछ कह, अब सब गार्जियंस भी नहीं ऐसे थे कि स्वेटर लेके आओ मास्टर से कुछ कहें। अब तो हैं जो लड़के मार दिए तो महतारी बात जुटते आज पहुँचे हैं कंप्लेन कर दें
जी। ये तो बात है,
ये सब तो नहीं था, मान सम्मान भी था। हम लोग जाते थे गुरु के गोड़ भिजवाते थे, साइकिल पहुँच देते थे। एक बार हमारे प्रिंसिपल, हम BTC करते थे, प्रिंसिपल ने कहा यहाँ आजकल के टीचर्स ऐसे हैं कि बच्चों से पैर दबवाते हैं, साइकिल घर का काम लेते हैं। तो हम कहा ऑब्जेक्शन प्लीज, कहाँ बोलिए कि हम आपकी बात से नहीं सहमत हैं। भगवान श्री कृष्ण सुदामा अपने गुरु के लिए जंगल में लकड़ी तोड़ने चले। अरे कहीं बैठे बैठे न वो युग है न जमाना है, वैसे उसकी बात
जी जी
नोक झोंक हुआ करती थी।
बिल्कुल सही बात है। एक शैतानी के नाम से मुझे याद आया जो हमारी कोहोस्ट आरजे मोनिका ने पूछा आपसे
जी।
हमने भी किया है कुछ टाइम, जिसे बोलते हैं घंटा गोल। तो क्या आपका भी वो इतिहास रहा है कि पढ़ने के दौरान आपने घंटे गोल किया, और घंटा गोल किया तो फिर क्या किया?
घंटा गोल क्या नहीं समझ पाए,
मतलब पढ़ने के बीच में आप कॉलेज से निकल गए हो, चुपके से भाग गए हो, और उसके बाद आपने कोई गेम खेला हो या दोस्तों के साथ?
हॉस्टल साथ लड़के ले जाते, पिक्चर दिखा देते भैया।
अच्छा, पिक्चर देखने आप जाते?
हाँ, और सबसे बड़े बड़े अधिकारी के लड़के रहे, तब चल दिए चल दिए, एक एक पिक्चर और धूल के फूल वगैरह दो दो तीन तीन दाएँ दिखा देते थे। हमारा पैसा थोड़ी लगा था, उससे अधिकारी के लड़के रहते थे।
और जब फ्री का टिकट मिलता है तो भाई देखने में अलग ही मज़ा आता है, बात तो सही है। ओके, तो यानी आपको जब मौका मिलता था तो जो अधिकारियों के लड़के होते थे आपके साथ वो ले जाते थे, क्योंकि भाई उनको पैसे की दिक्कत नहीं होती थी।
कुछ नहीं, हाँ।
और आपका था कि भाई यार फ्री का दिख रहा है तो चलो
जी
देख लीजिए। और वैसे भी देखिए, ऐसा कहा जाता है कि शरारतें भी होना जरूरी है
जी। हाँ,
और हर चीज कुछ ना कुछ जिंदगी में सिखाती है,
सिखाती है,
तो ये बहुत अच्छी बात आपने कही।
लेकिन हमारे प्रिंसिपल साहब के जमाने में RP श्रीवास्तव प्रिंसिपल थे ट्रांसजेंडर कॉलेज में, कभी स्ट्राइक नहीं हुआ। 1200 लड़के थे, 80 टीचर्स थे, इतना कंट्रोलिंग था कि वो जब राउंड पर निकले तो सब भाग भाग लुकाए जाते हैं कि बरामदे में कोई टीचर दिखाई पड़े।
अच्छा, मैं आपसे जानना चाहती हूँ कि आपका विद्यार्थी जीवन किस प्रकार था, जैसे कितनी डिसिप्लिन थी, कितना अनुशासन था, किस तरह से आपका पढ़ने का टाइम टेबल था? क्योंकि मैंने सुना है उस जमाने में टाइम टेबल बहुत मायने रखता था।
चार बजे वार्डन जो होते थे सबको कमरे में जाकर जगा देते थे, और उसके अलावा शाम को 10 बजे के बाद अगर कोई पढ़ रहा तो उसको रोक देते कि आप नींद लीजिए, फिर सुबह उठिए। डिसिप्लिन थी कि समय से पढ़ना है, समय से उठना है, और समय से जगा देना है। यह थर्ड क्लास में बिजली बत्ती नहीं थी, एक एक रुपये हम तो जमा करते थे, गैस मंगा लेते, 4 बजे गैस जला दिए, शाम का 10-10:30 बजे तक पढ़ाते थे गैस जला के। देहात में बताते हैं जहाँ बिजली व्यवस्था नहीं थी
जी जी।
अच्छा, और उसका कोई फीस नहीं लेते थे टीचर्स जो है, उसका फीस नहीं लेते थे, बस संजय सरकार उनके गाय भैंस हैं तो चला वला दी जाए, कि खावा लीजिए गुरु भाई, गुरु की सेवा कीजिए, जब आपको पढ़ा रहे हैं फिर तो कुछ ना कुछ करना चाहिए,
यानी उनका थोड़ा सा पर्सनल काम कर दिया जाए।
हाँ हाँ,
सेवा होनी चाहिए अब किसी भी प्रकार से।
हाँ, तन मन और धन तीनों सेवा की जाती है, तो ना ही धन है तो मन और हाथ पैर तो ही से तो किया जा ही सकता है
जी। अभी आपने बताया कि आपका साइंस जो है, जो विज्ञान वाला अप्रोच है लाइफ के प्रति
जी।
तो मैं ये जानना चाहती हूँ कि अभी भी जब आप किसी चीज को देखते हैं
बिल्कुल,
तो आप उसको साइंस के नजरिए से देखते हैं या बस नॉर्मली देखते हैं?
नहीं, देखने के बाद, तुरंत देखने के बाद ये मालूम हो जाएगा कि इसमें क्या क्या अच्छाइयाँ हैं, क्या क्या अवगुण हैं, गुण और अवगुण क्या क्या हैं, किसी में गुण ज़्यादा है तो किसी में अवगुण ज़्यादा है। और हर व्यक्ति में भी ऐसे हैं, कुछ ना कुछ अच्छाइयाँ बुराइयाँ सब में रहती हैं, चाहे सामान हो चाहे जो हो
जी। सबसे फेवरेट सब्जेक्ट आपका कौन सा था पढ़ाई के दौरान?
पढ़ाई जो बॉटनी बहुत था, बायोलॉजी बॉटनी जो था
जी,
इसीलिए वनस्पति विज्ञान से हमको ज्यादा प्रेम था
जी।
और वो चीज कहीं ना कहीं आपकी लाइफ में अभी भी नजर आ रही है, यानी पेड़ पौधों का जो लगाना है, उनकी देखभाल है।
जहाँ जहाँ हम बदल के जाते थे तहाँ स्कूल में जितना जगह था लगाओ थे, बच्चों से लगवाते थे, वो सब ढूंढते थे बेचारे, और बाल्टी से सींच भी सींचते रहते थे, देख रहे ज़्यादा पौधों के परेशान। तो जहाँ जहाँ गए हैं हर स्कूल में पौधे लगे होंगे।
हमने सुना है पहले के ज़माने में क्लास फर्स्ट से लेके एट्थ तक के बीच में गार्डनिंग यानी बागवानी का जो है एक सब्जेक्ट ही होता था।
हाँ,
तो आपने पढ़ा है इसे?
ओहो, यस, क्लास में पढ़ते थे एसडीआई साहब आए वो, तो ये गोई बैल हर मंगन का जोते खेती, तब हर बार बाभन ठाकुर ना जोते थे तो नहीं समझते रहे, लेकिन वो बताया रहे थे उसका दो तीन फेरा जोन है वो तक के हर घुमावा जाए, पाँच पाँच बीघा जमीन न है
जी।
वो देखा जाए। उसके अलावा जो है डिप्टी साहब कहें कि एक एक गाना सबको सुनाना है, और गाना तो गाना को वादा नहीं रहा, तो हेडमास्टर से कहा पंडित जी का मास्टर साहब का सुने बल लिखा है इनकी बिना विद्या के हमारी दुर्गतियाँ होगी राम, दुर्गतियाँ होगी राम बिना विद्या के हमारी। एक दिन हम गए स्टेशन करे रेल सवारी, और टिकट बाबू का हीरे लागन गठरी धरे उतारी, गठरी चरवा ले गए मारी, बिना विद्या के हमारी दुर्गतियाँ होगी राम। टिकट बाबू से कहा टिकट काट दो संगा चार सवारी, कहन कहाँ का जाबो कहा जाब ससुरारी, आने बचवा के महतारी, बिना विद्या के हमारी दुर्गतियाँ होगी राम। एक दिन हम गए सिनेमा देखे, वहाँ दौड़े घोड़ा गाड़ी, हम जाना हमारे ऊपर आवा खींच के लाठी मारी, भैया पुलिस जुटे सरकारी, बिना विद्या के हमारी दुर्गतियाँ होगी राम। जमींदार कहें अंगूठा लगाओ माफ आई है माल गुजारी, और धह के अंगूठा लगाए यहाँ सोचे न बेचारी, कहें कट गए काश तुम्हारी, बिना विद्या के हमारी। यही गाना जो है जो मास्टर साहब,
क्या बात है बड़ा ही बढ़िया, मतलब हैरान करने वाली बात ये कि आपको एक एक लाइन याद है उस चीज़ को, और उस जमाने का किस्सा है।
हाँ,
मेमोरी बहुत आपकी शार्प है, बहुत अच्छी बात है। इसी लाएंगे क्योंकि हमारे एक छोटे से शॉर्ट से म्यूजिकल ब्रेक का भी वक्त हो चला है। अपने श्रोताओं से हम कहेंगे कि आज हमारे बीच में श्री सूबेदार सिंह साहब मौजूद हैं, जो कि बहुत ही बेबाक अंदाज के साथ अपनी राय रख रहे हैं, और साथ ही बहुत ही खुल के अपनी चीज़ों को बता रहे हैं, और उनसे बात करने में बड़ा मजा आ रहा है। लौटेंगे इस छोटे से शॉर्ट से म्यूजिकल ब्रेक के बाद, सो कहीं मत जाइएगा, सुनते रहिए रेडियो 99.6 FM, ये है गोंडा शहर की धड़कन।
ज्ञानस्थली 89.6 FM, गोंडा शहर की धड़कन,
गोंडा शहर की धड़कन।
हेलो एवरीवन, आपकी फेवरेट आरजे मोनिका लेकर आती है ज्ञानस्थली बीट, जहाँ होती है पर्सनालिटी डेवलपमेंट की बातें, लाइफस्टाइल एंड ग्रूमिंग, स्पोकन इंग्लिश की बातें, किस्सा गोई और किताबों पर बातें, शेर व शायरी जिसमें कुछ अपनी कहेंगे कुछ आपकी सुनेंगे, और जिंदगी के अनसुने सलीके की बातें करेंगे। तो सुनना न भूलिए रोजाना दोपहर 3:30 PM। सो लर्न ग्रो एंड ग्लो विद आरजे मोनिका।
ज्ञानस्थली 89.6 FM, गोंडा शहर की धड़कन,
गोंडा शहर की धड़कन।
नहीं सुनेंगे अब बाजपन का ताना, अब तो बस गिफ्ट IVF है जाना। जी हाँ, निसंतान दंपतियों के घर भी अब गूंजेगी खिलकारी। गोंडा में मंडल का एकमात्र विश्व स्तरीय सुविधाओं से सुसज्जित IVF सेंटर, जो देता है आपके आंगन में खुशियों की सौगात। निःशुल्क परामर्श के लिए आज ही संपर्क करें 1800-120-60-60-60। गिफ्ट IVF, गोंडा मेडिकल सेंटर, पटेल नगर, गोंडा।
ज्ञानस्थली 89.6 FM, गोंडा शहर की धड़कन।
Oh, oh, oh. जी सकेंगे ना हम एक दूजे के बिन, जी सकेंगे ना हम एक दूजे के बिन।
स्थली 89.6 FM गोंडा शहर की धड़कन।
ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत करता है आपका अपना होस्ट एंड दोस्त आरजे अदनान मौजूद है आपके साथ आपके अपने स्टूडियो में। साथ ही मौजूद है को होस्ट के रूप में आज आरजे मोनिका और हमारी बातचीत का दौर जारी है श्री सूबेदार सिंह साहब से जो कि पूर्व प्रधानाध्यापक हैं पूर्व माध्यमिक विद्यालय शिव रतन सिंह। तो अभी तक हमने आपके बारे में जाना, आपके बचपने के बारे में जाना, अब आते हैं आपके काम के बारे में। जैसा कि अभी हमने आपके बारे में बताया अपने श्रोताओं से कि आप पूर्व प्रधानाध्यापक रह चुके हैं पूर्व माध्यमिक विद्यालय शिव रतन सिंह के बारे में
जी।
आपके करियर से स्टार्ट करते हैं कि आपने पहली जो जॉब अपने जिंदगी में की
जी
वो कहाँ की?
बीपीएस इंटर कॉलेज रेहरा बाजार में, बलरामपुर जिला में, वहीं हमने
जी।
और वहाँ केवल गणित और साइंस दो ही विषय पढ़ाया जाता था
जी।
हम गणित पढ़ाने के लिए वहाँ रखे गए थे। उसमें बीएससी वाले नहीं मिलते थे, जो इंटर पास कर गणित पढ़े हैं तो वही पढ़ने लगते थे
जी। अच्छा, मैं जानना चाहती हूँ कि जैसे आपने बताया आप सबसे पहले इंटर पास किए और फिर जाके वहाँ पढ़ाने लगे
जी,
तो आपको क्या लगता था कि जब आप वहाँ पढ़ा रहे थे तो आपको कभी लगा कि आपको थोड़ी सी और पढ़ाई कर लेनी चाहिए, फिर पढ़ाना चाहिए इन बच्चों को? दो ही क्लास छोटे हैं और आप पढ़ा रहे हैं।
बेटा, हमारे पास जमीन ज़्यादा थी तो खेती बाड़ी भी देख रहा था, इसलिए अध्यापक की लाइन हमारे पिताजी ने हमको चॉइस किया।
अच्छा,
कि आप घर भी देख लेंगे और अपना सर्विस भी कर लेंगे, इसीलिए हम अध्यापक लाइन में जुटे। और उससे हम काफ़ी खुश हैं, कोई ऐसी बात नहीं है, ना कोई चिंता है ना कोई हुआ है। अभी हम मोटरसाइकिल से घर से आए हैं, यहाँ मोटरसाइकिल लेके आए हैं अपना, हम अकेले। एक लड़का हम कर लो तो नहीं मिला हमको, चलो हम चले आए थे। अभी हम मनकापुर गोंडा मोटरसाइकिल चलाते रहे हैं।
आपकी एज क्या है इस वक्त?
इस समय बस दिसंबर में हम 79 पूरा हो जाएगा, 80 स्टार्ट होगा।
क्या बात है, हम तो भाई आपके स्वास्थ्य की कामना करेंगे पूरे FM टीम की तरफ से। ऐसे ही स्वस्थ रहिए, मुस्कुराते रहिए।
भैया पहले महुआ खाते हैं हम लोग, महुआ बहुत बहुत रहा, लाटा बनाए और भूज के खावा जाए, उसमें ताकत ज़्यादा होती, गांठ वाँठ में बैल नहीं पकड़ता था। और दोस्त तो बहुत ज़्यादा, तो कुछ दिन बाद तो घी का इंजेक्शन लगेगा, बच्चों को खा ही नहीं पाएंगे बेचारे घी वगैरह।
क्या बात है, आपने तो आने वाला वक्त ही बता दिया, और फ्यूचर में आने वाले टाइम में घी के इंजेक्शन के लिए तैयार रहो भाई, आने वाली पीढ़ी।
जनरेशन भी छोटा हो रहा है, पहले जो से 7-7 फुट के आदमी दिखाई पड़ते, जब इतने अतः धीरे धीरे के जनरेशन बहुत छोटा हो जाएगा, उनको शुद्ध भोजन नहीं मिल पा रहा है।
सही बात है, और आज का कॉम्प्लान भी असर नहीं कर रहा है
जी।
बिल्कुल सही बताया आपने। तो आपने बताया कि आप BPS इंटर कॉलेज,
हाँ,
रेहरा बाजार बलरामपुर डिस्ट्रिक्ट में, जो कि अभी है,
जुलाई 1965 में हम वहाँ ज्वाइन किए
जी,
और अक्टूबर 1968 तक थे। अक्टूबर 1968 में हम बेसिक शिक्षा परिषद में से निकल आए, उसको रिजाइन कर दिया। और BTC हमने मनकापुर से किया था।
BTC आपने मनकापुर से किया जी,
एक ही साल का होता था
जी। तो आपने उस वक्त भी पढ़ाई की है और उसके बाद आप आज के बच्चों को भी देख रहे हैं। आपने बताया था अभी थोड़ी देर पहले कि अनुशासन के नाम पे लोग टीचर से डरते थे
जी हाँ,
और टीचर खैर दिल लगा के
पढ़ाते भी थे
उस वक्त, ईमानदारी भी बहुत ज़्यादा थी सुनने में, ऐसे ही आप लोग के अनुसार कहा जाता है। अभी और तब में आपने बहुत ज़्यादा फर्क देखा है, अभी भी आप देख ही रहे बच्चों को पढ़ते हुए
जी।
आपको क्या लगता है कि आज के समय में किन चीज़ों में बदलाव होना अभी भी ज़रूरी है, अगर हम पुरानी चीज़ों को मद्देनजर रखते हुए देखें तो?
पहले अध्यापकों में अब तो सब कोचिंग ज़्यादा पढ़ाने, कोचिंग में वजह से पढ़ाते हैं,
उसमें कोचिंग का कल्चर बढ़ गया अभी।
हाँ, अब उस समय कोचिंग नहीं था, फिर ही पढ़ाते थे और वो अपना चाहे कर्तव्य समझते थे, चाहे जो इतवारों बुलाए रहे कि इतवार को भी आएगा पढ़ाएंगे, सुबह शाम भी जब हाफ डे होता था शाम को भी बुलाए रहते थे। कहने का मतलब ये उनका लगाव यही था कि हम अपने बच्चों को अच्छा से अच्छा शिक्षा दें और वो आगे निकलें
जी।
अभी आपने अनुशासन की बात की थी
जी,
आजकल एक अलग से सब्जेक्ट प्रोफेशनल पढ़ाया जाता है, पर्सनालिटी डेवलपमेंट
जी हाँ,
यानी आपकी पर्सनालिटी ग्रूमिंग करने के लिए अलग से बताया जाता है, कैसे उठे, कैसे बैठे, कैसे किससे बात करे। उस जमाने में कोई पर्सनालिटी डेवलपमेंट का कोई कोर्स नहीं होता था जहां तक मुझे पता है
जी।
तो एक टीचर उस वक्त आप लोग को कैसे सिखाते थे, जिंदगी के बारे में कैसे आपको तैयार करते थे कि किससे किस तरह बोलना है, आदर सम्मान कैसे करना है, जब जमाने में निकलेंगे बाहर आप जाएंगे तो कैसे लोगों से बोलचाल करना है, किस तरह से गलत लोगों से बचना है, ये सब क्या आपकी पढ़ाई के दौरान ही आपको बताया जाता था या इसकी भी कोई अलग से आप लोग की भी कोई क्लास होती थी?
नहीं, ऐसी बात नहीं, मास्टर साहब लोग हम लोगों को अगर नाखून बड़ा है तो एक डंडा फैल जाता था कि नाखून कटाए, कहीं नहीं आज नहाए नाई है तो तेल में लगाई चलाए, समझा गया ना, प्राइमरी जूनियर में
जी।
उसके अलावा कपड़ा अगर गंदा है तो वो एक डंडा फिर जाता है, अगर कहीं एक बटन टूट गई है तो वो एक डंडा फिर जाता रहा कि ये बटन टूट लगवाया कहीं दूसरा क्यों नहीं पहने, मतलब इस पर वही स्टाइक मास्टर लोग ज़्यादा गौर करते थे। बाल अगर बड़ा है तो भी पड़ जाता था कि बाल कब कटाओगे, इतने बड़े बाल क्यों हैं। उसके अलावा जब हम लोग 9-10 पहुँचे तो बैठने का ढंग ये था, कुर्सी बैठने तो भैया ऐसे झुका रहा था, झुकने के बजाय नहीं, कमर आपकी कमर से सर तक जो है सीधा रहा, कि रीढ़ की हड्डी आपकी सीधी रहे। उसके अलावा शाम को हाथ और पैर में कड़वा तेल लगा लिया जाता था कि अब पैर में लगा के कि हड्डी से ब्रेन तक यहाँ आके नसें जुड़ती हैं। कुछ लोग नंगे पांव चलते थे, कुछ जो है अपना चप्पल वगैरह, अब तो इक्यूप्रेशर हो गया है, उसी पे लोग खड़े होके ही अपना काम चला लेते हैं। कहने का मतलब है कि पहले जो है शारीरिक श्रम लोग ज़्यादा करते थे, अब उतना श्रम नहीं करते हैं। अब तो बस हेलीकॉप्टर मिल जाए तो उड़ जाए, या ट्रेन से ले जाए, या रिजर्वेशन हो जाए सवारी।
जी, तो चूंकि मेरा आपसे प्रश्न भी ये था कि पर्सनालिटी डेवलपमेंट की हमने बात की थी
जी,
तो आपने बताया कि पहले टीचर ही हर चीज का ख्याल रखते थे कि
हाँ,
आप
हाँ
सलीके से आए हैं, आप साफ सुथरे हैं कि नहीं हैं, आपने जो कपड़ा पहना है वो एक ढंग का पहना है, तरीका क्या है आपका, बाल कैसे हैं आपके, नाखून बड़े हैं या छोटे हैं,
हाँ।
यानी हर चीज का ख्याल टीचर उस पर टोकते थे, आपको पनिशमेंट दी जाती थी, सजा दी जाती थी, और उसको कहीं ना कहीं आप लोग फॉलो करते थे। ये बहुत सही चीज आपने कहा, लेकिन अभी कुछ ऐसी भी चीजें होंगी ना जिसको देख के आपको लगता है काश को हमारे वक्त में भी ये चीजें होनी चाहिए थी जो आज है
जी।
तो अगर उस वक्त मुझे ये मिल गई होती या उस वक्त के लोगों को, यानी हम लोगों को अगर मिल गई होती तो बहुत अच्छा होता
जी।
तो वो क्या ऐसी चीज है?
पहले शुद्धता ज्यादा थी खान पान में, अनाज में खाद वाद नहीं पड़ता था, देसी खाद नहीं पड़ता था, वो ग्राम से वो लोग जाते थे कि खाद डाल दो डाल दो, अब तो सब जो है खाद के बल पर जितना फल है तो भी प्रदूषित है, हम लोग अनाज है वही प्रदूषित, इससे बीमारी ज़्यादा पैदा होती है। जितने पिसे हुए सामान आते हैं इसमें कोई ये जरूरी नहीं कि शुद्धता जरूरी हो, और पहले रहती मसाला पीसा जाता था घर पे, आटा पीसा जाता था घर से, वही ढकिया जो पाठक जी बता रहे थे वो भी चलता था, इससे लोग मतलब तंदुरुस्त भी रहते थे, एक्सरसाइज भी होता था। अब तो बस खाना कहीं से मिल जाए बस लेटा रहिए सब
जी। आपने जो बताया ये तो हमारी पीढ़ी सोचती है कि हमको भी काश को प्योर मिल जाता, ये बिल्कुल सही बात है
जी।
अगर हम पढ़ाई की निस्बत से देखें आज की जो सुविधाएं मिल रही है
जी,
तो आपको भी कोई ऐसा चीज महसूस होता है कि काश को आपके वक्त में भी वो होती जो आज है पहले से? कोई अगर ऐसी बात है तो आप कह सकते हैं कि अगर आपके वक्त में आपको भी ये चीजें मिल गई होती
तब विज्ञान इतना आगे नहीं था, अब विज्ञान बहुत ज्यादा आगे हो गया है कि बैठे बैठे हर जगह खबर ले लीजिए, बात कर लीजिए। हमारे पिताजी सन 72 फिलिप्स रेडियो लाया था फैजाबाद से पांच बैंड के, तब सब कहें कि लंदन वंदन के साथ पकड़ लिया था, यह बहुत तारीफ करें कि कैसे वहाँ से यहाँ स्टेशन बना है पकड़ लेते हैं, अब तो टीवी पूरा सामने आ जाता है, तो विज्ञान तो काफी डेवलपमेंट किया है।
यानी आपका मानना अगर उस टाइम थोड़ा सा साइंस ने और तरक्की की होती तो आप लोग को भी बहुत सारे मौके मिले होते
जी,
आप भी बहुत सारी और भी चीजों को जान पाते और भी जगह जा पाते कर पाते, ये बहुत अच्छी बात है। आपके टीचिंग मेथड पे आते हैं, आपने तो बता दिया कि भाई पहले जो था अनुशासन वो मारना होता था बच्चों को सुधारने के लिए
जी।
लेकिन देखिए पढ़ाने का तरीका भी टीचर्स का बहुत अच्छा होता था, वो हर चीज पे कहीं ना कहीं अपनी जिंदगी का एग्जाम्पल देते थे, उदाहरण देते थे लोगों को और बच्चों को वैल्यू सिखाते थे
जी।
आपका बच्चों को अनुशासन सिखाने का क्या तरीका रहा है, आप कैसे पढ़ाते थे?
हम लोग ज्यादातर जो है जो हमको कहना होता बच्चों से ही कहलाते थे, जैसे जो टीचिंग में ब्यूटी सीडो करते थे वो पूछते थे घुमा फिरा के कि हमारे कहने से बच्चे उत्तर दें और आंसर आता चला जाए, तो ये मेथड ज़्यादा अच्छा था। बच्चे भी हर जगह लड़के पता नहीं किस बच्चे से टीचर्स बोल रहे हैं, सब एक्टिव रहते थे, और अब तो जो है टीचर्स बैठा रही हैं लेक्चर दी हैं चाहे सुनो चाहे यहाँ वहाँ ताकि।
अच्छा, पुराने जमाने के टीचर्स में हमने एक चीज देखी है, वो जब बोर्ड पे लिख रहे होते थे तो जान बूझ के कोई एक स्पेलिंग गलत करके लिख देते थे बच्चों का अटेंशन देखने के लिए।
अच्छा,
कि बच्चे नहीं तो आपने ये कभी फेस किया है या आपने कभी ये ट्राई किया है?
नहीं, ये तो नहीं किया। एक बार टीचिंग कर रहे थे
जी,
ट्रेनिंग में तो जो लाइन खींची जाती है तो इधर से इधर खींच जाते, हमने इधर से इधर खींच दिया, तो वो हमारे उसमें नोट कर दिए कि आपने इस तरह से नहीं खींच, इधर से खींचना चाहिए था।
अच्छा,
हाँ,
आपने उल्टे साइड से खींच दिया।
हाँ हाँ, जल्दी में इधर से इधर लाइन खींच दिया, और खींचना चाहिए इधर से।
यानी बनी बनाई जो एक रीत परंपरा है
जी,
उसको आपने तोड़ते हुए
हाँ,
एक नई परंपरा का निर्माण कर
दिया। तो वो जो पीछे बैठते टीचर उसने जल दिए तो ध्यान आ गया कि हाँ ये गलत हुआ, ऐसा नहीं होना चाहिए, जल्दी में खींच दिया था।
अच्छा, एक चीज मैं जानना चाहूंगा कि बच्चों के विकास के लिए
जी
खेल कूद या सांस्कृतिक जो कार्यक्रम किए जाते हैं, कल्चरल इवेंट्स होते हैं साल भर में बहुत सारे से
हाँ, बहुत होते हैं
तो कितना महत्वपूर्ण रखते हैं किसी बच्चे के विकास के लिए?
असल में बच्चे जितना भी कार्यक्रम करेंगे कुछ सीखेंगे जरूर। टीचर सिखाते हैं कोई नौटंकी या जो भी, तो उसमें सबका पार्ट अलग अलग होता है कि आप ये कहेंगे, ये कहेंगे, वो कहेंगे, और उसमें जो है हंसी मजाक का भी कुछ आ जाता है कि बातें सुन के हंसने से भी फेफड़ा फूल जाता है, थोड़ा मानसिक शांत होती है। अब तो जो है देखें इतना प्रदूषण है कि जो सांस लेंगे तो उसमें भी तमाम चीज़ें हैं, डीजल पेट्रोल तब इतना इंजन तो थे नहीं, ना इतनी गाड़ियाँ थी। अब तो बड़े बड़े शहरों में तमाम दिल्ली उल्ली में सब बाईपास बना रहे हैं कि छोटी गाड़ी केवल जाए या इलेक्ट्रिक वाहन या सूर्य के प्रकाश से वाहन हो, ये प्रदूषण ख़त्म करने के लिए, और इसी से ज़्यादा बीमारियां भी पैदा हो रही हैं प्रदूषण
जी। बिल्कुल सही आपने कहा प्रदूषण। प्रदूषण से मुझे एक बात याद आई, आपने एक साइंस के टीचर रहे हैं
जी,
और आप देख के बता देते हैं किसी के भी गुण और अवगुण के।
हाँ हाँ,
तो आप हमें ये बताइए
जी
कि बहुत सारी ऐसी मान्यताएं होती हैं हमारे समाज में जो लोग कहते हैं कि उसको धर्म से जोड़ के देखते हैं, लेकिन चूंकि आप एक साइंस टीचर रहे हैं और उसके पीछे का आप साइंस जानते हैं
जी,
तो आपको क्या लगता है कि जो भी हमारे आस पड़ोस में जो कुछ भी घटता है उसके पीछे एक साइंस होती है या सच में कुछ धार्मिक ऐसे रीजन होते हैं जिसका कोई पता ही नहीं है कि वो होता है?
ऐसा है भैया कि धर्म को अगर साइंस से कुछ देखे तो दोनों एक ही, अध्यात्म और विज्ञान दोनों एक ही है
जी।
पहले भी लोग कहते थे कि मतलब उड़न खटवाला से पहुंच जाते थे इधर उधर, अब हवाई जहाज हेलीकॉप्टर से जाते थे। ऐसे भी बाण थे उस ज़माने में कि जो है तीर जिसको मारेंगे वहीं जाके लगता था है? तो ये सब पहले भी था विद्याएं, और जो जिसमें क्षेत्र में आगे थे अब जो है विज्ञान पर लोग ज़्यादा जा रहे हैं, अध्यात्म में बहुत कम लोग जाते हैं, बहुत कम जा रहे हैं।
अच्छा, मैंने ये चीज़ नोटिस की है कि हम जो होते हैं हमें जो है साइंस ज़्यादा ना बताकर धर्म इसलिए बता दिया जाता है
हाँ।
कि लोगों को लगता है कि हम साइंस के नाम पर नहीं लेकिन धर्म के नाम पर उस चीज़ को फॉलो कर
जी हाँ।
तो इस पर आप क्या कहना चाहेंगे कि साइंस के नाम पर हमें चीज़ें फॉलो करनी, साइंटिफिक अप्रोच देखते हुए धर्म के नाम पर फॉलो करनी चाहिए?
शिक्षा में धर्म को तो कुछ जोड़ना चाहिए, ये तो ज़रूरी है
जी,
इसलिए कि थोड़ा जब तक अध्यात्म को नहीं रखेंगे तब तक शिक्षा में उतना शुद्धता नहीं आएगी। बच्चे भी मनमानी पढ़ेंगे, जिसे मतलब कुछ न कुछ कोर्स तो ऐसा ही रहता ही था। अब आप देखें वास्को डी गामा को क्या मालूम था कि कौन देश कहाँ है,
इसलिए
किए हुनसांग फाहियान जो है
जी,
चीन से पैदल चले थे, पूरे भारत का भ्रमण किए थे
जी,
उसमें सवारी, लेकिन पूरे भारत के जहाँ जहाँ गए उसमें शेरशाह सूरी का प्रबंध था
जी,
उसने साफ साफ लिखा जीटी रोड के बारे में कि शेरशाह सूरी का प्रबंध बड़ा अच्छा था, जीटी रोड कलकत्ता से पेशावर तक जो बनी है उसके सड़क के किनारे दोनों तरफ छायादार पेड़ लगे हुए हैं, और एक एक मील पर सराय और कुआं बना हुआ था कि रुकना चाहे कोई रात में तो वहाँ रुक जाए। कितना तारीफ किया, आखिर वह भी तो ऐसे थे। और साहल जो है वास्को डी गामा कोलंबस से कम नहीं होना चाहिए, तो निराश है कि राह की जान पड़ता है कोई पृथ्वी मिल भी नहीं करी, लेकिन मिले
जी।
तो मतलब साहस होना चाहिए, अध्यात्म को भी ये समझते हैं, अपना पूजा पाठ करते होंगे, जो भी हो आध्यात्मिक ऊर्जा तो है ही है, और उसके अलावा कोई ऐसा काम सबको खुश यहाँ घर में 10 परिवार हैं चला ही मिलते, इतना बड़ा विश्व है या देश है, कैसे लोग चला पाएंगे
जी जी जी
जी। तो इसी दौरान हमें ये, चूंकि हमने देख लिया वक्त का इशारा हो गया है फिर से एक छोटे से शॉर्ट से म्यूजिकल ब्रेक का
जी,
तो इस ब्रेक के लिए जाते हैं और अपने श्रोताओं से कहेंगे सुनते रहिए रेडियो ज्ञानस्थली 89.6 FM, ये है गोंडा शहर की तरफ।
ज्ञानस्थली 89.6 FM, गोंडा शहर की धड़कन,
गोंडा शहर की धड़कन।
मैं पढ़कर अपने सपनों को पूरा करना चाहती हूँ, मैं भी अपने पैरों पे खड़ा होना चाहती हूँ।
सारे सपने होते हैं साकार, क्वालिटी एजुकेशन के साथ
सरस्वती देवी नारी ज्ञान स्थली पीजी कॉलेज, जहाँ एजुकेशन के साथ स्टूडेंट्स के कंप्लीट पर्सनालिटी डेवलपमेंट पर काम किया जाता है, जहाँ है वेल इक्विप्ड लैब्स, प्रॉपर लाइब्रेरी और ग्रीन कैंपस। साथ ही साथ आपको मिलता है वोकेशनल कोर्सेज में योगा, कंप्यूटर, म्यूजिक, ब्यूटिशियन, स्टिचिंग, टेलरिंग और रेडियो जॉकी, जो आपके बच्चे को देता है एक नई उड़ान। साथ ही साथ NSS, स्पोर्ट्स और को करिकुलर एक्टिविटीज की रेगुलर क्लासेस। गोंडा जनपद का पहला गर्ल्स कॉलेज सरस्वती देवी नारी ज्ञान स्थली पीजी कॉलेज। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 9450 75 74 83, 9450 75 74 83।
ज्ञान स्थली 89.6 FM, गोंडा शहर की धड़कन।
गोंडा शहर की धड़कन।
जब भी पहनिए कुछ खास पहनिए, आ गया है आपके अपने गोंडा शहर में साड़ी संसार, जो लेकर आता है आपके लिए सभी प्रकार के वैवाहिक एवं फैंसी साड़ियों का लेटेस्ट कलेक्शन, जिनमें शामिल है सलवार सूट, लहंगा चुनरी, लेगिंग जैगिंग, ब्लाउज, पैंट, कुर्ती, शरारा गरारा, सभी उचित मूल्यों में उपलब्ध हैं। पता है गांधी पार्क के सामने, हनुमानगढ़ी रोड निकट LPS चौराहा, मालवीय नगर, गोंडा। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 9936 19 3000, 9936 19 3000।
ज्ञान स्थली 89.6 FM, गोंडा शहर की धड़कन।
भटक रहे हो तेरे कहाँ कहाँ पे न जाने, भटक रहे हो तेरे, तुम्हारा प्यार न मिलता, तुम्हारा प्यार न मिलता, तुम मर गए हो तेरे कहाँ 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 पे न जाने, कहाँ कहाँ पे न जाने, कहाँ कहाँ पे न जाने, भटक रहे हो तेरे कहाँ कहाँ। कर हमें संभाल लिया, बढ़कर हमें संभाल लिया, हवा कुछ ऐसी चली थी, बिखर गए होते, हवा कुछ ऐसी चली थी, बिखर गए होते, तुम्हारा प्यार न मिलता, तुम्हारा प्यार न मिलता, तुम मर गए होते कहाँ कहाँ पे, कहाँ कहाँ। भटक रहे होते कहाँ कहाँ पे। सितारे पहरा लगाते हमारे चारों तरफ, सितारे पहरा लगाते हमारे चारों तरफ, सितारे पहरा लगाते हमारे चारों तरफ, हम एक दूजे की बाहों में सो रहे होते, हम एक दूजे की बाहों में सो रहे होते, तुम्हारा प्यार न मिलता, तुम्हारा प्यार न मिलता, तुम मर गए होते कहाँ कहाँ पे, कहाँ कहाँ पे न जाने, कहाँ कहाँ पे न जाने, कहाँ कहाँ पे न जाने भटक रहे होते कहाँ कहाँ पे। खुद को जो देख लेते कभी, मेरी निगाह से खुद को जो देख लेते कभी, खुद को जो देख लेते कभी, तुम्हारे हाथ से आईने गिर गए हो, तुम्हारे हाथ से आईने गिर गए होते, तुम्हारा प्यार न मिलता, तुम्हारा प्यार न मिलता, तुम मर गए होते कहाँ कहाँ पे, कहाँ कहाँ पे न जाने, कहाँ कहाँ पे न जाने, कहाँ कहाँ पे न जाने भटक रहे होते कहाँ कहाँ पे।
ज्ञान स्थली 89.6 FM गोंडा शहर की धड़कन।
ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत करता है आपका अपना होस्ट एंड दोस्त आरजे अदनान, मौजूद है आपके साथ आपके अपने वाले स्टूडियो में। शो चल रहा है गोधुली और आप सुन रहे हैं रेडियो ज्ञानस्थल 89.6 FM, ये है गोंडा शहर की धड़कन। हमारे बीच में आज स्पेशल रूप में मौजूद हैं श्री सूबेदार सिंह साहब, जो की पूर्व प्रधान अध्यापक है पूर्व माध्यमिक विद्यालय शिवरतन सिंह। आपने भी चूंकि बताया था कि आपको वनस्पति विज्ञान में बहुत ज्यादा इंटरेस्ट रहा है, साथ ही आपने पौधों की पेड़ों की बात की, बहुत सारी ऐसी एनवायरमेंट से जुड़ी हुई बातें की हैं, तो अब हम ये एक क्योंकि आपके बारे में चीजें सुनी हुई है तो हम जानना चाहेंगे कि कितना आखिर प्रेम, प्रेम लेकिन कितना पर्यावरण से
है। तो सब जीवधारी ही तो दो राय नहीं है, चाहे आम का पेड़ हो चाहे जिसके, अब सब जीवधारी हैं। और उसके अलावा ये इतनी हमारे यहाँ प्रदूषण इतना है, तमाम पत्थरों को काट डालते हैं, पहाड़ों को काट खनन कर प्रकृति से सब छेड़छाड़ कर रहे हैं, इसीलिए प्रकृति भी साथ नहीं दे रही है। गर्मी, कहीं गर्मी ज़्यादा है तो कहीं बाढ़ ज़्यादा है, ग्लोशियल जो है पिघल रहा है, धीरे धीरे जलस्तर बढ़ रहा है, ये सब अव्यवस्थित है। कहाँ तक ये सुधार पाएंगे? पेड़ों का कटान जारी है, लगाते तो हैं तो लगा भी नहीं पाते हैं सही, और ना उतनी ज़मीन ही अब बाकी है कि पेड़ लगा लें।
तो अभी तक तो आपने बताया था कि साइंस बहुत तरक्की कर रहा है।
जी हाँ, तरक्की
और
हाँ,
बहुत नई नई टेक्नोलॉजी आ रही, तो आखिर ये इंसान चाहता क्या और कब ये रुकेगा?
ये सब पैसा के चक्कर में बालू खुदान, मोरंग खुदान, पहाड़ कटान, यही सब कर रहे हैं। थोड़ा सा पौधों की तरफ ज़्यादा अगर ध्यान देते हैं तो पर्यावरण को शुद्ध रहेगा, नहीं कुछ दिन बाद शुद्ध हवा इनको सांस लेने नहीं मिलेगी, और लोगों को कहना पड़ेगा कि आप शहर छोड़ के जाके देहात में कहीं घर बना लीजिए जहाँ पेड़ पकड़ियाँ लगे।
एक तरीके से ये कटाक्ष ही तो है कि साइंस डेवलप कर रहा है। हाँ। और उस फेक डेवलपमेंट के नाम पर जो है हम पेड़ों को काट रहे हैं, प्रदूषित कर रहे हैं, जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं उनका खनन कर रहे हैं, तो इस पर आप क्या कहना चाहेंगे कि साइंस तो डेवलप कर ही रहा है, तो साइंस का ये जो डेवलपमेंट है ये नेचर के प्रति कितना हानिकारक है?
हानिकारक तो बहुत, इसलिए बालू का खुदान जितने करेंगे उतने धरती माता जो है ये नाराज होती जाएंगी। उसके अलावा धरती माता की प्यास बुझने सूर्य का प्रकाश इतना तेज अब आ रहा है कि वो बर्दाश्त नहीं लोग कर पाते, सब एसी में घूमते हैं, क्योंकि कूलर चलाए हैं। और पहले था कि जब प्रकृति जितना रखते थे उसी में सब संतुष्ट, चाहे ठंडक हो तो ठंडक, बरसात हो तो बरसात, गर्मी हो तो गर्मी। इसके अलावा जो है जब सरकार, जनसंख्या इतनी बढ़ रही है, अगर जनसंख्या पर रोक नहीं लगाएंगे तो गर्मी नहीं दूर कर पाएंगे, ना सबका खाना पानी दे पे हैं, ना सांस लेकर इनका जगह मिले।
बिल्कुल बिल्कुल, ये बात तो सही कही आपने। अच्छा भी आपने कहा कि सब लोग देहात की तरफ चलेंगे।
हाँ, कुछ दिन
तो
बाद चलेंगे।
हम ये कहना चाहते हैं कि अब शहरीकरण ज्यादा हो रहा है, देहात जब बचेंगे ही नहीं तो हम देहात की तरफ कैसे जाएंगे?
ये प्रकृति व्यवस्था करेगी बेटा भैया, कि जो है कोई ऐसी व्यवस्था कि चाहे भूकंप आ जाए, कुछ जनसंख्या कम हो, चाहे विश्व युद्ध छिड़ जाए, या जो है वो क्या कहते हैं प्रकृति, मतलब धूप गर्मी से कुछ मरेंगे, कुछ तमाम बीमारियां से, क्यों वायरस फैल रहे हैं तमाम, ये सब ये प्रकृति की व्यवस्था है।
जी जी, हमने सुना है कि माल्थस का एक सिद्धांत था कि जब जैसे जैसे जनसंख्या बढ़ती जाएगी और एक ब्रेक आएगा और जनसंख्या अपने आप खत्म होगी,
खत्म होगी,
तो इसी के बारे में आप कह रहे थे।
जी
जी, तो ये जानना चाहती हूँ कि ये जो जनसंख्या है ये साइंस डेवलपमेंट की वजह से ही ज्यादा है, जितना हम डेवलप हो रहे हैं उतना हमारा देखिए अभी हेल्थ जो है वो अच्छी हो रही है लोगों की।
जी।
हमारा लाइफ स्पैन जो है वो बढ़ रहा है, बर्थ रेट भी बहुत ज्यादा हो रही है, अब डेथ रेट भी कम हो रही है, तो ये साइंस डेवलपमेंट ही है। और आपने अभी बताया कि साइंस डेवलपमेंट अच्छी है, तो इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? अभी आपने बताया कि गुण और अवगुण दोनों
में है बेटा।
जी,
और जब तक प्रकृति से ज़्यादा छेड़छाड़ करेंगे तो कहीं भूखलन होगा, तो कहीं पहाड़ कटेंगे, कहीं भूकंप आएगा, एक एक प्राकृतिक आपदा आती रहेगी।
ओके, तो अभी बताया कि भाई जो हर एक चीज़ का दो पहलू होता है।
जी,
एक अच्छा होता है, एक बुरा होता,
बुरा
है,
होता है,
ये बात हमको समझ में आती है।
जी,
आपने एनवायरमेंट के लिए बताया कि बहुत सारे पेड़ पौधे लगाए हैं, तो आपने तो लगाए हैं ये बात ठीक है, लेकिन क्या आपसे प्रेरित होकर और लोगों ने भी लगाया, या आपने प्रेरित करने के लिए अब तक लोगों से क्या कहा और क्या किया?
तमाम हित मित्र हमारे कहने से ही लगाए हैं, और उसके अलावा देखने से भी, जब सभी लोग लगाए थे कि जलोनी लकड़ी मिलेगी, इससे कुछ आर्थिक प्रगति भी होगी, तो लगाना शुरू कर दिए हैं।
तो कौन कौन से पेड़ पौधे लगाए हैं अभी तक आपने?
कटहल और अमरूद और लीची, ये तो सब बिजनेस के, सागवन के पेड़, यूलिपिस्टिक के पेड़ बाग के चारों तरफ लगा दिए कि जो हवा का झोंका रोके, पौधे जो है सुरक्षित रहें।
इसके बारे में जरा विस्तार से बताएंगे कि आपने यूकलिप्टस या सागवन क्यों लगाया, किस तरह से बचत होगी छोटे पेड़ों की?
नहीं, आंधी तूफान जब आते हैं तो बीच में जब बाग फल लगा हुआ है तो सीधे जाएंगे तो गिरेंगे, और ये हवा का झोंका रोक लेते हैं पौधे किनारे किनारे लगे।
अच्छा,
और कुछ लोग तो बिजनेस की वजह से फरदा लगा देते हैं, एक बार ये सागवान लगाए तो 10-5 बीघा लगा दिए, और कुछ लोग किनारे किनारे लगाते हैं।
यानी आपके सागवान के पेड़ जो है वो हिमालय की तरह दुश्मनों से सुरक्षा करने का काम करते हैं।
हाँ जी हाँ।
डायरेक्ट तौर पे जो हवा आती है उसको रोकते हैं ताकि जो छोटे पेड़ हैं बीच के जिनके फल हैं
वो गिरे ना
वो टूटे ना वो उड़े ना। इस वजह से ये आपने एक अच्छी बात कही है कि ये तरीका हो सकता है। तो हमारे जो भी किसान भाई या जो भी ऐसे हमारे श्रोतागण हैं जो अपने घर में पौधा लगाते हैं बागवानी करते हैं उनको ये बात ध्यान रखनी चाहिए कि चारों तरफ किनारे किनारे बड़े पौधे जैसा कि आपने बताया यूकेलिप्टस हुआ सागौन हुआ इसको लगा के इस तरह से रोका जा सकता है। यानी एक तरीका एक ट्रिक्स है, ट्रिक है।
जी।
ये बहुत अच्छी बात है। आप बताइए कौन से ऐसे हैं जो ज्यादा ऑक्सीजन देते हैं और कहीं ना कहीं शहर में देखिए मैंने बहुत देखा है कि डिवाइडर बनाए जाते हैं
जी।
और बीच में कई ऐसे पौधे लगाए जाते हैं जो शो में तो देखने में अच्छे लगते हैं लेकिन वो उतना ऑक्सीजन नहीं देते हैं।
अब वैसे पीपल और बरगद और पाकड़ ये तो ऑक्सीजन बहुत ज्यादा देते हैं
जी।
बरगद पीपल पाकड़ इसके भी पौधे हम नदी साइड में बंधा बनवाए हैं तो लगवा दिए, दो तीन पीपल लगा दिए, बरगद लगा दिए, पाकड़ लगवा दिए कि ये चिड़ियों को खाने के लिए सामान को मिलेगा और पर ये ऑक्सीजन बहुत ज़्यादा बनाते हैं।
लेकिन एक बात है हम डिवाइडर पर जो है पीपल और बरगद तो नहीं लगा सकते।
हाँ नहीं लगे वो तो नहीं हो पाएगा। यहाँ छोटे छोटे पौधे जो हैं लगाए जाते हैं जैसे मतलब फूल पाती लगा दिया जाता है कि मतलब सुरक्षित रहे खुशबू भी रहे और डिवाइडर में तो पेड़ लगाना ठीक नहीं है।
एक बात और जानना चाहेंगे अगर आप उसको बताएं तो ये आपका जो हेल्थ का राज है क्या ये घर में उगाया जाने वाली सब्जी और फल ही है जो ताज़ा आपको मिल जाता है शुद्ध?
हाँ हाँ सब्जी टुल्लूपम लगाए सब्जी बो लियो बाजार से लेबो क्या ना कितनी दवा उसमें छिड़के रहते हैं पॉइजन रहता है। अगर जानवर नहीं पाल सकते हैं तो दूध ले लिए कोई बात नहीं लेकिन सब्जी भी तो ले ही लेना चाहिए।
तो ये बताइए आपकी एज 80 साल होने वाली है
जी हाँ।
आपने इतने सारे पेड़ पौधे लगा दिए
जी हाँ।
जाहिर सी बात है इतने बड़े एरिया को देखने के लिए देखभाल करने वाला चाहिए
हाँ।
और कहा जाता है कि आज मजदूर को की काफी कमी हो गई गांव में लेकिन अगर फिर भी हम जैसे सब्जियों की बात करें छोटे पौधों की बात कुछ बहुत सारे आपने मेडिसिनल पौधे भी लगाए होंगे
हाँ हाँ।
जो दवाओं के तौर पे काम आते होंगे
जी
तो उनकी देखभाल कौन करता है?
देखभाल हम ही लोग करते हैं, हम देखते हैं, लड़के देखते हैं और कुछ जो व्यापारी बाग वाग लेते हैं वो भी देखते हैं अपना
जी। अच्छा मैं जानना चाहती हूँ कि ये जो अभी आपने बताया कि आपका शौक रहा था ये पेड़ पौधों का उनसे हाँ। प्रेम तो ये बॉटनी की वजह से है
हाँ।
कि बचपन से ही शौक था?
नहीं ज्वालोजी बॉटनी हम लोग पढ़ते थे, ज्वालोजी से कम बॉटनी से इंटरेस्ट बहुत ज्यादा रहता था
जी
हाँ। वनस्पत विज्ञान से इंटरेस्ट बहुत ज्यादा रहता।
अभी अपने बारे में बताते बताते आपने बताया था कि आप विशारद और साहित्य रत्न।
हाँ ये तो खाली टाइम था कर लिए थे क्या करें
जी। तो इससे साहित्य में कहीं आपका रुझान रहा कि आपने बस यूं ही साहित्य रत्न कर
डिग्री बढ़ाने के लिए कर लिया था?
डिग्री बढ़ाने के लिए आपने किया था माना हमने, लेकिन कहते हैं कि साहित्य पढ़ने वालों को कुछ कवियों लेखकों शायरों से प्यार हो जाता है, कोई आपका एक फेवरेट तो रहा होगा?
नीरज की कविताएं बड़ी अच्छी लगती थी और भी मैथिली शरण गुप्त की भी।
आपने नाम लिया है गोपाल दास नीरज
जी
जो इतिहास
जी
के लोग भी जानते हैं और साथ में आज जो साहित्य पढ़ते हैं
जी
उसमें कोई शायद ऐसा हो जो ना जानता हो क्योंकि वो एक बहुत बड़ा नाम है। कुछ उनकी कविताओं को अगर कोई याद है तो आप बताना चाहें।
हाँ याद जरूर नीरज की कविताएं। जब सुना सुना तुम्हें लगे जीवन अपना तो मुझे बुलाना मैं गुंजन बनाऊंगा, जब प्यार लुटाने निकलो तुम संसार बीच मेरे अनाथ मन को तब याद नहीं आना, वरदान बांटने जाओ जब तुम दुनिया में मेरे भिक्षुक सपनों पर खाक उड़ा जाना, ऐसे ऐसे बहुत सी कविताएं लेके। हाँ एक प्राण गीत एक किताब थी
जी,
प्राण गीत एक किताब वो हम लोग बहुत ज़्यादा पढ़ते थे
जी। तो आपने कहा कि प्राण गीत करके एक किताब उनकी हुआ करती थी उसको आपने?
वो हमारे टीचर्स पढ़ते थे तो वो जब चला जाएँ यहाँ बाहर उठ के इंटर कॉलेज रहे तब की तभी यहाँ सब लेके चला जी मांग के गुरु जी का काम दे दे
जी। ये तो बहुत अच्छी बात है कि भाई पढ़ने का इतना जज्बा था दिलचस्पी थी पढ़ने में। लेकिन ये मैं जानना चाहूँगा कि जैसे आपने बताया वनस्पति विज्ञान पढ़ा वो आपकी जिंदगी में कहीं ना कहीं दिखा कि आपने पेड़ पौधों से प्रेम किया
जी,
साहित्य की भी एक छाप दिखती है
जी।
और आपको क्या लगता है? मुझे तो ऐसा लगता है जो साहित्य से जुड़ा होता है वो एक अलग ही दुनिया में होता है।
होता तो है लेकिन हम चूंकि वैज्ञानिक विद्यार्थी थे तो वो
दिमाग लगा लेते थे
खोज करने की प्रवृत्ति थोड़ा ज्यादा रहती थी
जी।
जो वैज्ञानिक होते हैं उन्हें खोज करने की प्रवृत्ति ज्यादा होती है।
तो आप वैज्ञानिक दृष्टिकोण को ज्यादा लेके चल रहे थे इसलिए आपका जो लॉजिकल माइंड था ये ज्यादा शार्प हो गया था
जी।
और साहित्य कहीं पीछे छूट गया फिर।
हाँ, साहित्य पीछे छूट,
क्योंकि साहित्य को बोलते हैं कि इमेजिनेशन की एक दुनिया है।
असल में जब सर्विस कर लिए तो साइंस साइड से पढ़ सकते थे नहीं, प्राइवेट आर्ट साइड ही सहारा होता था।
जी जी जी, और कहीं ना कहीं हमें भी ऐसा महसूस होता है कि अगर साहित्य से जो भी शख्स जुड़ा हुआ है
जी,
वो समाज को बेहतर जान पाता है और कहीं ना कहीं वो मर्म उसको महसूस होता है, एक जो फीलिंग होती कह सकते हैं कि संवेदना, वो जिंदा रहना बहुत जरूरी है, क्योंकि जिस दिन संवेदना मर जाएगी उस दिन समाज का फिर कोई मतलब ही नहीं रह जाएगा और इंसान होने का कोई अर्थ नहीं रह जाएगा
जी।
सो इसलिए ये बात बिल्कुल सही लगती है। और सबसे पहले तो हम ये बता दें कि आज हमारे बीच में मौजूद थे अभी तक श्री सूबेदार सिंह साहब, जो कि पूर्व प्रधानाध्यापक है पूर्व माध्यमिक विद्यालय शिव रतन सिंह। आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा, आज हमने आपकी जिंदगी के बारे में जाना, आपकी पढ़ाई लिखाई, आपकी फैमिली बैकग्राउंड के बारे में, आपके करियर के बारे में, आपकी टीचिंग मेथड के बारे में, आप क्या मानते हैं, किन चीज़ों को कैसे देखते हैं नज़रिया उसके बारे में, साथ ही साथ आपका जो प्रेम है पर्यावरण के प्रति उसके बारे में भी आपने हमको बताया। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और जाने से पहले चूंकि एक सवाल हम सारे गेस्ट से करते हैं, आपसे भी ये कहेंगे कि आप बैठे हुए हैं रेडियो ज्ञानस्थली 89.6 एफएम के स्टूडियो में, जो कि देवी पाटन मंडल और गोंडा का पहला एफएम है, आपको क्या लगता है आने वाले दिनों में ये गोंडा वासियों के लिए क्या बेहतर कर पा रहा होगा?
ये गोंडा वासियों के लिए पूरे विश्व में इसका स्टेशन बना हुआ है, लोग सब सुनते होंगे तो कम से कम नाम तो हो ही रहा है। उत्तर प्रदेश में एक गोंडा जिला देवी पाटन मंडल है, ये स्टेशन बना हुआ है और समय से देखते हैं तो बड़ी खुशी होती है कि कम से कम विकास तो हो ही रहा है, भले ये अभी जल्दी शुरू हुआ। और तो कोई स्टेशन यहाँ पे है नहीं अभी?
जी नहीं, अभी तो नहीं, सिर्फ ये पहला है, एकमात्र।
तो इससे तो बड़ी खुशी है, पूरा आप लोगों का नाम हो रहा है, विद्यालय का भी नाम हो रहा है।
जी बहुत सही आपने बात कही, क्योंकि ऐप के थ्रू पूरे विश्व में सुना जा रहा है। सबसे बड़ी बात तो ये है कि इंडिया के बाहर भी, इंडिया में बहुत सारे राज्य हैं, उन राज्यों से भी, और यूपी में अपने कई जिले हैं, और स्पेशली अगर हम गोंडा की बात करें तो गोंडा से तो हर खित्ते से इंसान उसको सुन ही रहा है। सो बहुत बहुत शुक्रिया, आप हमारे बीच में आए, आपने अपना कीमती वक्त दिया और आपसे आज बहुत कुछ सीखने को और जानने को मिला, बहुत बहुत शुक्रिया आपका।
धन्यवाद,
थैंक यू सो मच। और हम यही कहेंगे कि भाई कल फिर मुलाकात होगी किसी नए गेस्ट के साथ, उनकी जिंदगी के कुछ किस्सों को जानेंगे, कुछ पहलुओं को जानेंगे, साथ ही उनके कार्यक्षेत्र के बारे में जानेंगे। इसलिए सुनते रहिए रेडियो 89.6 एफएम, ये है गोंडा शहर की धड़कन।
ज्ञानस्थली 89.6 एफएम, गोंडा शहर की धड़कन, गोंडा शहर की धड़कन।
आपके हर दिन की उम्दा शुरुआत आपके अपने आरजे अदनान के साथ, नई सुबह नई बात, थॉट ऑफ द डे एंड व्हाट हैपेंड टू दिस डे, जिंदगी की बात, जिंदगानी की बात, गोंडा की बात और गोंडा वालों की बात, आपके अपने आरजे अदनान लेकर आते हैं गुड मॉर्निंग गोंडा। सुनिए हर सुबह 8 बजे ओनली ऑन रेडियो ज्ञानस्थली 89.6 एफएम, गोंडा शहर की धड़कन, स्टे ट्यून्ड।
ज्ञानस्थली 89.6 एफएम, 89.6 एफएम, गोंडा शहर की धड़कन।
मैं डॉक्टर रेखा शर्मा, जिला समन्वयक जिला विज्ञान क्लब, अपने गोंडा जनपदवासियों से कहना चाहती हूँ, आज का युग पूर्णतः विज्ञान का युग है, इसलिए वैज्ञानिक चिंतन अपनाइए, अपने जीवन को सुखी बनाइए। आज विज्ञान केवल विज्ञान के विद्यार्थियों और शिक्षकों तक ही सीमित नहीं है, विज्ञान घर घर में पहुंच चुका है, मोबाइल रूपी विज्ञान हर व्यक्ति के हाथ में है, इसलिए वैज्ञानिक चिंतन बहुत जरूरी है, क्योंकि विज्ञान के उपकरणों का प्रयोग और दुरुपयोग दोनों समझना हम सभी के लिए बहुत जरूरी है। बहुत बहुत धन्यवाद।
ज्ञानस्थली 89.6 एफएम, गोंडा शहर की धड़कन, गोंडा शहर की धड़कन।